ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆல், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் ஐத்ரேய உபநிஷத் பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ திவ்ய சைத்தன்யஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரபிரம்மா பரமேஸ்வர் உன்கே அசீம கிருபாசே ஆப் லோக் अपने ही स्वरूप को जानने के लिए ऐतरेय उपनिषद के ऊपर जो प्रवचन है उसके ऊपर यथा शक्ति अनुसार विचार करते हुए आप लोग अनुभव करेंगे. कल विचार चल रहा था चाहे तो हम स्वाध्याय हो प्रवचन हो क्यों करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य ये है किसी ना किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए, किसी ना किसी वस्तु को जानने के लिए. कल ही बताया था प्रयोजनम बिना मंदोपी न प्रवर्तते. सबसे जो मुख्य प्रयोजन है अर्थात मुख्य फल है वो जो अपना स्वरूप को जानना. भगवान भाष्यकार जी ने एक जगह बताया है जिसको जानने के बाद और कोई जानने के लिए अवशेष नहीं रहता है, जिसको पाने के बाद और कोई पाने के लिए अवशेष नहीं रहता है, उसी तत्व को जानने के लिए हम स्वाध्याय में अथवा प्रवचन में प्रवृत्त होते हैं. तो इसलिए जो तत्व है कौन, वो क्या बाहर है? नहीं, तो हमारे अंदर ही है. हमारे अंदर है उसी को ही जानना है. वो कोई अलग नहीं है, वो सुख स्वरूप है. कल ही बताया था हमारा स्वरूप सत चित आनंद स्वरूप. शरीर हम नहीं है ये स्पष्ट है. हम बोलते हैं मेरा शरीर. आप ये सिद्ध नहीं कर सकता है, मेरा शरीर भी सिद्ध नहीं कर सकते आप, संभव नहीं है. मान लीजिए जैसा आप किसी कमरे में रहते, आप मतलब इस शरीर, उस कमरे में कोई अपरिचित व्यक्ति आ गया, आपके आज्ञा के बिना वो प्रवेश करेगा नहीं कर सकता, चाहे तो आप उसको हटा भी सकते, मेरा कमरा आप नहीं आ सकते. अब यदि वो आना भी चाहता है आपके इच्छा के अनुसार आएंगे, तो वैसे ही क्योंकि वो कमरा मेरा है इसलिए मेरे इच्छा के बिना कोई नहीं आ सकता. वैसे ही यदि शरीर यदि मेरा होता तो बिना पूछे उसमें कोई आना नहीं चाहिए. आते ये रोग आ रहे क्या, आपको बोल के आ रहे क्या, अरे मैं आ रहा हूं आपके कमरे में मुझे आश्रय दीजिए, नहीं बोलता है. बीमारी जो आ रहे हैं आपको बोल के नहीं आ रहे, अपने इच्छा से आ रहे. तो इससे सिद्ध होता है शरीर मेरा ही नहीं सिद्ध होता है. तो भी मान लिया मेरा शरीर है, मैं शरीर को देखने वाला है, साक्षी हूं, दृष्टा हूं. तो इसलिए शरीर तो सुख स्वरूप नहीं होगा। मान लीजिए कुछ समय के लिए शरीर को देख रहे मन, मान लीजिए मन से हम देख रहे, मन से विचार कर रहे, मन से चिंतन कर रहे, तो बाद में आप कहते हैं महाराज हम चिंतन करते करते थक गया, मेरा मन काम नहीं कर रहा है। अरे मेरा मन काम नहीं कर रहे, ये आपको ज्ञान हो रहे, उस मन को कौन देख रहे, थोड़ा सा विचार कर दीजिए। इसका मतलब मन को भी देखने वाले हैं आप है। तो इसलिए कोई अलग तत्व नहीं है, हम प्रवचन के द्वारा भी हो अथवा स्वाध्याय के द्वारा ही उस सुख को ही प्राप्त करना है। हम सुख सुनते हुए तुरंत हमारे सामने वैषयिक सुख सामने आता है, वैषयिक मतलब विषय संबंधी सुख, विषयों के द्वारा भी मिलता है सुख, पंचदशीकार ने विचार किया है वहां भी, किंतु क्या विषय में वास्तव में सुख है, क्या किसी को मिला है, क्या मिलेगा, कोई भी हाथ उठा करके गारंटी नहीं दे सकते हैं। यदि गारंटी दिया तो हम वेदांत छोड़ के हम भी आएंगे वहां, इसलिए है नहीं। मान लीजिए अभी यहां पंखा चल रहे, अच्छा लग रहा है, हरिद्वार अथवा बद्रीनाथ में पंखा चला दीजिए, क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, वहां भी अच्छा लगना चाहिए, वहां भी आपको आनंद मिलना चाहिए, वहां भी आपको मस्ती आनी चाहिए, पंखा में यदि सुख होता तो। इसलिए विषय में सुख नहीं है, विषय एक व्यंजक है। जैसा अभी हम लाइट जला दिया, यहां लाइट चल रहे सारा, ये लट्टू है केवल बिजली को प्रकट कर रहे, व्यक्त कर रहे, लट्टू में बिजली नहीं है, वैसे ही ये विषय है उस सुख का व्यंजक होता है। वो भी सारे विषय नहीं है, जो आपको अनुकूल हो वो विषय आपको सुख को प्रकट करेगा, प्रतिकूल होने से वो सुख को प्रकट नहीं करेगा, सुख को दबा देता है, इसलिए हम दुख की बोलते। इसलिए अनुकूल और प्रतिकूल को लेके होता है विषय, इसका मतलब सुख वो नहीं है, वो सुखाभास है। जो वास्तव जो सुख है उसको छोड़ करके आप सुखाभास को ढूंढ रहे तो आपको सुख कैसा मिलेगा, नहीं मिल सकता है। तो सुख किसको कहते हैं, सुख का तात्पर्य क्या है, हरेक व्यक्ति चाहते हैं, कौन व्यक्ति नहीं है मुझे सुख ना मिले, मनुष्य मात्र नहीं पशु भी चाह रहे, सभी चाह रहे। तो इसलिए सुख का वहां बता दिया है, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीय सुखम, सबके लिए जो अनुकूल है वो सुख है। अभी जगह पंखा है हम लोगों के लिए अनुकूल है, हरिद्वार और बद्रीनाथ वालों के लिए अनुकूल नहीं है, और बद्रीनाथ में वहां अग्नि अनुकूल है, हम लोगों के लिए अग्नि तापने से पसीना आ जाएगा, अनुकूल नहीं है। किसी को रसगुल्ला खाने से आनंद आ रहे, डायबिटीज वाला देखते हैं मुंह मुकर देंगे, तो कहां अनुकूल है, सबके लिए अनुकूल नहीं है वो, अपेक्षाकृत किसी किसी वस्तुओं के लिए अनुकूल बन रहे। तो इसलिए सुख का बता रहे सर्वेषाम, समस्त लोगों को जो अनुकूल होता है वो सुख है। कौन हो सकता है सबके लिए अनुकूल, आत्मनस्तु कामाया सर्वं प्रियं भवति, बृहदारण्यक उपनिषद के याज्ञवल्क्य जी बता रहे। अपने के लिए ही, अपने प्रयोजन के लिए ही हम दूसरे से प्रेम करते हैं, तो सबके लिए जो अनुकूल है, सबके लिए जो सुख है, वो कोई अलग नहीं है, वो अपना आत्मा है, वो स्वरूप है। ये आप युक्ति के द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। शास्त्र तो बता रहे, उसमें कोई संदेह नहीं। जहां अपने को बचाने के लिए आप सब कुछ छोड़ देते, प्रिया से प्रिय वस्तु को भी छोड़ देते। 2013 में जो प्रयाग का कुंभ हुआ था, अंतिम में वहां किसी कैंप में आग लगी थी रात्रि के समय में। एक संत थे, हमारे से पढ़ते थे, वो भी दूसरे कैंप में थे। रात्रि में हल्ला हो गया, आग लग गई, आग लग गई, सारे सो गए थे, उठ गए और कुटिया से उठ के भाग गए एकदम, आग लग गई घर की। सारा सामान छोड़ दिया, उनके पास लैपटॉप भी था, सब कुछ था, मोबाइल सब सामान था, सब छोड़ के भाग गए। बाद में देखा, अरे ये तो आग दूर के कुटिया में, हमारे कुटिया से बहुत दूर है, दूसरे कैंप में लग गए। धीरे से गए, सबसे पहले अपना लैपटॉप लेके आ गए। तो सबसे पहले स्वयं प्रिय था, उसके बाद लैपटॉप प्रिय हो गया। बाद में देखा आग और भी दूर है, बुझा रहे, अपना झोला उठा के लेके आ गए। तो कहने का तात्पर्य है, सबसे पहले स्वयं के प्रति प्रेम। भगवान भाष्यकार जी ने शतश्लोक में स्पष्ट किया है, सबसे जो प्रेम है हमारे आत्मा से। पंचदशी में भी आप लोगों ने जो स्वाध्याय वाले सुने हैं, प्रथम प्रकरण में परम प्रेमास्मद कहा गया, उसमें उससे बढ़कर कोई प्रेम नहीं है, वो अपने स्वरूप से होता है। वो जो स्वरूप उपलब्ध हो रहे हैं, हमारे मन से उपलब्ध हो रहे हैं। मनसा एव आप्तव्यः स्तुति बोलती, मन के द्वारा ही हम उसको पहचान सकते हैं। भगवान ने एक ऐसी वस्तु दी है, मन है। कल ही कहा दिया था मैंने, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कोई साधना नहीं, वो साधना से परे है। साध्य ही नहीं तो साधन कहां से बनेगा। तो भी उन्होंने एक ऐसी वस्तु दी है, मन। उस मन के द्वारा आप जान सकते हैं, उस मन के द्वारा ही उसको पहचान सकते, और परमात्मा को देने के लिए भी हमारे पास कोई है नहीं, क्या दे सकते हैं। इसलिए एक महापुरुष ने कहा दिया, भगवान मैं आपको यदि गंगा जल चढ़ाने जाऊं, गंगा जी तो आपके सिर में पहरे ही विराजमान है, और यदि आपको मैं आरती करने जाऊं, सूर्य और चंद्रमा पहले ही आपको प्रकाशित करते हुए अपना निरंतर प्रकाशित कर रहे हैं, और भगवान मैं यदि पुष्प चढ़ाने जाओ, सारे जगत को आपने बना दिया है, मैं कैसा पुष्प चढ़ाऊं, क्या कि आपके ही बगीचे से उठा के मैं चढ़ाऊं तो ये चोरी नहीं होगी। तो आपको यदि मैं स्तुति करने यदि जाओ, सारे जगत है, सारा वेद स्तुति करते करते थक गया है, इसलिए मैं क्या दे दूं आपको। हां मेरा पास एक मन है, तो मन भगवान को हम समर्पण कर सकते। इसलिए साधकों को, विचारकों को मन को शुद्ध करना चाहिए, सारी साधना मन के लिए, क्योंकि ये परमात्मा का विराजमान अर्थात परमात्मा बैठने का ये सिंहासन है, परमात्मा का मंदिर है। उस परमात्मा के मंदिर में यदि कूड़े करकट आदि हम लोग डालेंगे तो कैसा बैठेगा वो परमात्मा। आपके पास एक सुंदर अलमारी है, मान लीजिए बढ़िया अलमारी है, उस अलमारी की शोभा तभी है सोना हीरा रखने पर, रास्ते में जाने वाले जो चप्पल को लाके यदि आप अलमारी में रख दिया, उस अलमारी की क्या शोभा होगी। वैसे ही जो अलमारी के समान है, मंदिर के समान है, हमारा अंतकरण है। यदि ये शुद्ध नहीं हुआ, परमात्मा कैसा उसमें विराजमान होगा। जैसा पुराण में आता है प्रकरण, हिरण्यकशिपु अपना पुत्र प्रह्लाद को बार बार सता दे रहा है, क्योंकि विष्णु के विरोधी है वो, किंतु ये विष्णु का नाम छोड़ते नहीं। बार बार उसको कभी अग्नि में, कभी पहाड़ से, कभी सर्पों से डसा रहे। उतने में उनकी जो माता है कयाधु, माता तो माता ही होती है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, आचार्य जी बता रहे। माता का हृदय पिघल गया, अरे मेरा पतिदेव क्या कर रहे, ये छोटा सा बच्चे को कितना सता रहे, मैं क्या करूं, किससे कहे। क्योंकि एक अंदर की व्यथा कहने के लिए है, पतिदेव है, पतिदेव ही नहीं मान रहे तो किसको कहेंगे। बहुत दुखी हो गए। दुखी होते होते देखे परमात्मा कोई ना कोई रास्ता दिखाता है। मनुष्य घबरा जाते हैं, यदि साहस करेंगे तो उसको कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। उतने में उनका गुरुदेव है नारद जी वहां प्रकट होते। नारद को प्रणाम करती है, भगवान मेरा पतिदेव ये क्या कर रहे, ये छोटा सा बच्चे को ऐसा सता रहे, मैं क्या करूं। नारद जी कहते हैं कयाधु, तेरा पुत्र जो कर रहे वैसा ही तुम भी करो, जो भगवान की जो भजन कर रहे वैसा तुम भी करो। उन्होंने कहा गुरुदेव जितने भी मंदिर है मेरा पतिदेव ने तोड़ दिया है, मैं कैसा पूजा करूं, कैसा उपासना करूं, आप ही बता दीजिए। तो नारद जी बताते हैं देवी तेरा पति ने सारा मंदिर भले ही तोड़ दिया, किंतु एक मंदिर अभी भी बचा है, उसको कोई नहीं तोड़ सकते, चाहे तो स्वयं तोड़ सकती, दूसरे कोई भी नहीं तोड़ सकते है। वो मंदिर है आपका अंतकरण, वो मंदिर है आपका मन। उस मन में भगवान को बिता के तुम चिंतन करो, उस मन में बिता के तुम भगवान का स्मरण करो, उसको तेरा पति भी नहीं तोड़ सकता है, क्योंकि वो तेरा अस्तित्व है। तो कहने का तात्पर्य यह है, ये अंतकरण है, मन शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, तभी जाके वेदांत भी हमारे अंदर फल देता है। ये श्रुति है, साक्षात भगवती है, शब्द है। शब्द में तो शक्ति है, उसमें कोई संदेह नहीं। व्यवहार में हम देखते हैं, कल भी मैंने बताया था, किसी को आपने एक शब्द बोल दिया कोई ऐसा, उससे लेके झगड़ा हो गया, झगड़ा होते होते मारा मारे वो गोली भी चल रहे थे केवल शब्द से। इसका मतलब शब्द में शक्ति है। एक सामान्य एक शब्द हमारे इतना चोट पहुंचा रहे हैं, क्या श्रुति माता का शब्द हम लोगों को क्यों चोट नहीं पहुंचा रहे, वो भी एक शब्द है। कारण क्या है, एक शब्द के द्वारा इतना अग्नि के जैसा चिंगार हो के महाभारत हुआ पूरा, केवल एक शब्द से। द्रौपदी ने एक शब्द प्रयोग किया, उसी से ही पूरा महाभारत खड़ा हो। अन्य भी कारण है, किंतु मुख्य कारण वो मानते। क्या श्रुति के शब्द के द्वारा हमारे महाभारत होकर हमारे अंदर बैठे हुए शत्रु क्यों नहीं मर रहे, क्यों नहीं विचार कर रहे। विचार करने से ही निकलता है, लौकिक शब्द हम प्रयोग करते हैं, ये कठोर शब्द है। हमारा अंतकरण भी ऐसा कठोर हुआ है, मान लीजिए पत्थर के ऊपर पत्थर मारने से क्या हुआ, चिनगारी उत्पन्न होती है। वैसे ही लौकिक जो शब्द है पत्थर के समान कठोर है, हमारा अंतकरण भी कठोर है, इसलिए क्रोध रूप अग्नि उत्पन्न होती है उसमें। एक क्रोध जो उत्पन्न होता है सबसे पहले आपके आंख से झलकता है और दूसरा है वाणी में आरूढ़ हो जाता है, अनाप शनाप बोलने लगता है, और तीसरा है हाथ और पैर में आता है, जो हाथ में मिल गया डंडा उसे मार देंगे, वो देखेंगे नहीं सामने कौन व्यक्ति है, पूजनीय कुछ नहीं, क्योंकि गीता में कहा क्रोधात भवति सम्मोहा। इसलिए जो कठोर शब्द के द्वारा हमारा अंतकरण जो कठोर है टक्कर होने से उसमें अग्नि प्रकट होती है क्रोध रूप से। और श्रुति वाक्य है उपनिषद वाक्य है ये फूल के पंखुड़ियों के समान है। मान लीजिए यदि आप फूल के पंखुड़ी किसी पत्थर के ऊपर फेंक दिए तो क्या होगा आप ही बताएंगे, नीचे गिर जाएंगे। इसलिए जो पुष्प के समान पंखुड़ी के समान ये श्रुति वाक्य है हमारे कठोर अंतकरण में लगकर नीचे गिर रहे, पकड़ने के सामर्थ्य नहीं आ रहे। और वही फूल की पंखुड़ी यदि अपमाकन है उसके ऊपर फेंक दीजिए उसको चिपक जाएगा गिरेगा नहीं। तो वैसे ही हमारा अंतकरण को माकन के समान निर्मल बनाना चाहिए, कोमल बनाना चाहिए, पवित्र बनाना चाहिए। उसी मन के द्वारा हम वस्तु को ग्रहण कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं, तभी जो सुख है हमारा स्वरूप उसको हम जान सकते हैं। अभी भी वही तत्व है किंतु हमारा मन उसको नहीं पकड़ रहा है। उसको खोजने के लिए ही हम सत्संग कर रहे, स्वाध्याय कर रहे, प्रवचन सुन रहे। इसलिए सुख है हमारा स्वरूप है। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीय सुखम, सारे लोगों को जो अनुकूल होना चाहिए वो एक ही तत्व है आत्मतत्व। बाकी कोई भी विषय दे के संसार में सबसे अच्छे से अच्छे वस्तु मान लीजिए, अब कुछ लोग मानेंगे दूसरे के लिए वो अच्छा नहीं है, सबके लिए कहां अनुकूल हुआ, किसी को अनुकूल है किसी को प्रतिकूल हो रहा है। किंतु शास्त्र बता रहे सबको जो अनुकूल हो एक ही है अपना स्वरूप आत्मा है वही सुख है। यहां किसी के मन में विचार हो सकता है, चिंतन हो सकता है, विचार होना ही चाहिए साधक के अंदर, चिंतन होना ही चाहिए, चिंतन होने से वो चिंता मिट जाती है। चिंता है उसके पीछे नकार लगा दीजिए वो चिंतन हो गया, अर्थात चिंता नहीं है चिंतन। चिंता अनर्थ का कारण है और चिंतन है चिंता मिटाने वाले। चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए। तो आपने कहा ये सुख है अपना स्वरूप है आत्मा है, ये कैसे हो सकता है। दूसरे दार्शनिक लोग है सुख को गुण मानते हैं, नैयायिक आदि आत्मा का गुण मानते हैं, आप सुख आत्मा कैसा मान रहे हो। किंतु सबसे मूल प्रमाण है श्रुति माता, वेद प्रमाण है। वेद यदि प्रमाण है वो स्वतः प्रमाण है, अन्य के द्वारा आप सिद्ध नहीं कर सकते। जैसा आप है वो स्वतः प्रमाण है, कोई सिद्ध नहीं करना पड़ेगा आपको। आपके सामने यदि वस्तु है आपके आंख सिद्ध करेंगे, आंख के द्वारा देख के बता सकते हैं, किंतु आपको सिद्ध करने के लिए कोई दूसरा जरूरत नहीं, कोई प्रकाश के अवश्य नहीं। कल ही बता दिया था मैं अंधकार में बैठे है कौन है, मैं हूं। न वहां सूर्य का प्रकाश चाहिए, न चंद्रमा का प्रकाश चाहिए, न इंद्रिया चाहिए, कोई नहीं, आप स्वतः सिद्ध है। किंतु अनुभव करने पर भी वो अनुभव टिकता नहीं, तो इसलिए सुख है वो आत्मस्वरूप है, उसमें प्रमाण है शास्त्र, छांदोग्य उपनिषद ही प्रमाण है वहां। कल ही संकेत दिया था छांदोग्य उपनिषद में, पांचवा अध्याय तक उपासना है, छठवें जो अध्याय में वह महावाक्य का निरूपण किया, और सातवा अध्याय में वह नारद और सनत कुमार का संभाषण है। नारद है सारे शास्त्र का ज्ञाता है, क्योंकि नाम से ही झलकता है नारम ज्ञानम ददाति इति नारद। नारम कहते हैं ज्ञान को, तो ज्ञान देता है इसलिए उसका नाम है नारद। महाभारत में देखिए नारद जी स्वयं सुखदेव जी को उपदेश कर रहे, नारद गीत से प्रसिद्ध है।